तैयार है ये प्रस्ताव सुनने के लिए, लेकिन सुनने से कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि आप ग्रहण करेंगे तो आपका परम उपकार होगा। ये प्रस्ताव है कि ये यूथ फोरम है नहीं, आप सब तो नहीं, लगभग सब युवक है, और अधिकांश अविवाहित है नहीं, तो अविवाहित का मतलब बाद में विवाह होगा, क्या होगी। और यदि आप विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे तो आपका पूरा जीवन कृष्ण अनुसंधान के लिए उत्सर्ग कर सकते। अर्थात यदि विवाह नहीं करेंगे, गृहस्थी नहीं होंगे, तो आपका दुर्लभ मानव जीवन आप पूर्ण सफल बन सकेंगे ब्रह्मचारी जीवन में। यही मेरा प्रस्ताव, मुझे मालूम नहीं आप कितना है तैयार है ये बात सुनने के लिए, लेकिन यदि एक यही बात सुनेंगे तो वो काफी होगा। ओह, ब्रह्मचारी जीवन, उसका मतलब शादी नहीं होगा। मम्मी और पापा क्या कहेंगे, बहुत शंका होते हैं, बहुत डरते हैं लोग। लेकिन अगर आप करेंगे तो पहले ही ऐसे सोचे कि अभी आपका आप सभी का संबंध है कृष्ण भक्ति के बारे में, इसलिए आप यहां उपस्थित है। आप कृष्ण भक्ति में कम से कम कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली, तो समझना चाहिए कि बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हम इस दुर्लभ मानव जीवन मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन ज्यादा लोग जो मानव जन्म प्राप्त करते हैं तो वो अवसर जो है मानव जीवन में उसको नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि मानव जीवन में यही जीवन में अवसर है कृष्ण भक्ति के द्वारा संसार चक्र से मुक्त होना, और कि हम अनादि काल से भगवान कृष्ण और उनकी सेवा जो भक्ति कहलाते हैं उसको भूल करके हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करते हैं। तो इस अनादि समस्या से समाधान प्राप्त करना संभव है मानव जन्म में, तो ये बात सोचनीय है। इसके पहले हम कितने सारे योनि में प्रवेश किए हैं और कितने सारे बार हम शादी की चुके हैं। जब मैं कुत्ता था, मेरी सुंदरी कुत्ती थी इत्यादि, सुआ था, बिली था, चूहा था, ऊंट था, सांप था, पक्षी था, पैर था, इंद्र था, ब्रह्मा था, कीट, क्रीमित। अभी मानव जन्म प्राप्त चुके हैं। भगवान कृष्णा भगवद गीता में नहीं, श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद, उद्धव उनके प्रिष्ट प्रिय भक्त उद्धव को बताया, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम् आर्थतम नित्यम अपी हधीर चूर्णम यथेत न पतेत चूर्णम पतेत न पतेत अनु जीवन जावत विषय खलु सर्वथा स्यात्। निश्चयासाय विषय खलु सर्वथा स्यात्, अर्थात इस मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अभी हम मानव जीवन प्राप्त किया है तो हम ज्यादा दिन मानव शरीर धारण नहीं करेंगे, तो उसके पहले वो कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होगा, जिससे मुक्ति मिलेगी। और यदि हम विचार करते हैं कि शादी करना पड़ेगा या भौतिक भोग विलास करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना है, हम क्यों पूरा जीवन उत्साह करेंगे परम शांति परम भक्ति प्राप्त करने के लिए? तो यही उत्तर है कि इसके पहले असंख्य जन्मों में हम अवसर मिले भौतिक इंद्रिय सुख के लिए, और इसके बाद भी यदि हम इस मानव जन्म का अवसर नहीं लेंगे, यदि हम इस जीवन भी पशुओं जैसे केवल इंद्रिय सुख के लिए उत्साह करेंगे, तो इसके बाद भी हम असंख्य दफे अवसर मिलेंगे इंद्रिय सुख के लिए। परंतु मानव जन्म में बुद्धिमान होना चाहिए। भगवान हमको विशेष बुद्धि दी थी, वो बुद्धि का उद्देश्य बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियर होना नहीं है। ये बुद्धि परम सत्य का अनुसंधान में लगाना पड़ेगा। तो हम प्रगतिशील है, दिल्ली में कितने बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन देखो जो चीटी भी बिल्डिंग बनाते हैं, पक्षियों भी। तो केवल मानव जीवन में यही अवसर है परम सत्य का अनुसंधान करना, और वो परम सत्य है कृष्ण। कृष्ण और कृष्ण भक्ति में मानव जीवन पूर्ण रूप में पूर्ण होते हैं, इससे परम कल्याण होते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी कृष्ण भक्ति करना है, लेकिन बहुत विघ्न भी होते हैं, बहुत उपद्रव होते हैं, और ज्यादा ध्यान और शक्ति सांसारिक कर्तव्यों में, दैहिक कर्तव्यों में, पारिवारिक कर्तव्यों में लगाना है। जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपका पूरा दिन में और आधा रात में भी, तो पूरा ध्यान केवल सॉफ्टवेयर में लगाना पड़ेगा। और जो भी आप करते हैं, अगर आप रिक्शा ड्राइवर हो तो आपका पूरा ध्यान तो रास्ते पर लगाना पड़ेगा, ड्राइविंग में। और बहुत सांसारिक चिंताओं भी होती हैं, तो कहाँ से काफी पैसा मिलेगा, कहाँ से तो कहाँ नहीं। काफी पैसे तो कभी भी नहीं मिलते, पैसे तो कभी भी काफी नहीं होते। तो ब्रह्मचारी जीवन में ये सब चिंता नहीं है, और पूरा समय प्रत्येक दिवस 24 घंटे में केवल गुरु और कृष्ण की सेवा करना है, तो अपना कल्याण होते हैं और पर उपकार भी होते हैं। देखो तो पूरा जगत कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं करके नरक की ओर जाते हैं, तो इसलिए बहुत बुद्धिमान होशियार उत्सर्गित शक्ति संपन्न युवकों कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए होना चाहिए। तो यदि सब अपना भोग विलास के लिए इस प्रकार कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, तो ठीक है, मैं कृष्ण भक्ति करूंगा, मेरे जीवन का मुख्य ध्यान है काम करना, संसार चलाना, और हफ्ते में एक बार मंदिर जाऊंगा, और दिन में जैसे तैसे हो 16 माला जाप करूंगा, दीक्षित होऊंगा, लेकिन मेरा जीवन का मुख्य लक्ष्य है सक्सेसफुल होना, भौतिक समाज का विचार में सक्सेसफुल, अर्थात एक और मूर्ख बनाना, सक्सेसफुल मूर्ख। तो ऐसे आप उस प्रकार भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, और जैसे तैसे हो कृष्ण भक्ति करना, वो प्रशंसनीय है। परंतु यदि आप अभी तक संसार में फंस नहीं गया, तो उसमें फंस जाने का जरूर क्या है। तो यही अवसर है। आप गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान जो होते हैं ब्रह्मचारी जीवन में, तो एक ही नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, मन मना भव मद भक्तो सदैव मुझको चिंतन करो। तो ब्रह्मचारी जीवन में ये व्यवस्था है, जिससे केवल ब्रह्मचारी होने से सदैव कृष्ण का स्मरण होते हैं। सुबह उठना, मंगल आरती जाना, माला करना, भागवत क्लास सुनना, और दिन भर कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहना। तो ऐसे हर रोज कृष्ण भक्ति होती है, और विशेषकर इसकॉन संस्थ का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार, क्योंकि कलयुग का प्रभाव से लोग तो पूरा विपरीत दिशा पर जाते हैं। तो सभी लोगों को भगवद गीता का यथार्थ उद्देश्य प्रचार करना, ये इस कृष्ण भक्ति संघ का उद्देश्य है। और इसलिए बहुत सारे प्रचारक होना चाहिए। तो आज आप भगवद गीता में भगवद गीता का ज्ञान और कैसे भगवद गीता प्रचार करने आप प्रशिक्षण मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत प्रचार करना चाहिए, केवल दिल्ली में नहीं है, केवल भारत में। भारत विशाल देश है, तो कितने जगह में ये कृष्ण भक्ति, ये शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार अभी तक तो नहीं पहुंचा। बहुत है गांव और शहर भारत में जिसमें इस्कॉन की कोई उपस्थिति नहीं है, प्रचार नहीं हो पाता है। और दिल्ली में और ये पूरा दिल्ली इलाके में प्रचार बहुत चलते है, लेकिन और भी बहुत स्कोप है नहीं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो इसका जरूरत है, क्योंकि आजकल लोग तो अगर इस शुद्ध कृष्ण भक्ति वाणी नहीं मिलेंगे तो आधुनिक जमाना का प्रभाव से तो पूरा अधपतित होते। तो ये मेरा प्रस्ताव है, आप कम से कम विचार कर सकते। कि ये मेरी स्थिति है, मैं जवान हूं, लेकिन वास्तव में मैं जवान नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और अभी इस स्थिति में हूं। इसके पहले कितने सारे स्थिति में था, इस स्थिति में हूं और ये स्थिति अनुकूल है कृष्ण भक्ति को पूरा ग्रहण करने के लिए। इस मानव जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है और भाग्य से मैं अभी केवल मानव जन्म प्राप्त किया नहीं, मैं इस दुर्लभ मानव जन्म में सत्संग भी मिला। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भक्ति प्रचार चल रहा है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवद गीता यथारूप का प्रचार चल रहा है और श्रील प्रभुपाद और उनके अनुगामी जनों की कृपा से मैं अभी इस भगवद गीता यथारूप कृष्ण भक्ति के बारे में वो अवसर मिला ये कृष्ण भक्ति प्रचार सुनने के लिए। तो कितने भाग्यवान है आप लोग, ये लोग जो कृष्ण भक्ति मिलते हैं लेकिन ऑलरेडी फंस गए हैं संसारिक जीवन में। तो उनके लिए भी हरि नाम परम आध्यात्मिक चिकित्सा है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थजन हरि नाम लेने से उधार नहीं मिलेंगे, उधार मिल सकते, लेकिन ब्रह्मचारी जीवन में वो ही अवसर है जिससे निश्चिंता से आप पूरा जीवन उत्सर्ग कर सकते कृष्ण सेवा में। तो ये मेरा प्रस्ताव है, मुझे मालूम नहीं आपके बीच में एक जन है जो इस बात सुनने से प्रेरित होंगे, लेकिन अगर आप सबों में कहा माँ बाप से फोन आता है वो बात मत सुनो कृष्ण भक्ति करो अच्छा है ठीक है, लेकिन इतना सा नहीं, थोड़ी भक्ति करने से वो अच्छी है लेकिन ज्यादा नहीं। कृष्ण भक्ति बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस माताएं की स्वास्थ्य के लिए। क्या होते हैं, और अगर कोई जवान ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो निश्चित है उसकी माता बहुत बड़ा बीमार होगी, और एक ही चिकित्सा है कि वो ब्रह्मचारी नहीं होगा, नहीं तो मर जाएगी या सुसाइड करेगी। मा इसका मतलब माया, माया मत जाओ कृष्ण भक्ति में, मेरे पास आओ, मुझे भक्ति करो। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दस, लेकिन तुम्हारा स्वरूप है मेरा दास, मेरी सेवा करो। परम धर्म है माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप इस प्रकार प्रचार करते हैं। तो कितना माँ बाप मिले इसके पहले, कुत्ते का माँ बाप भी है। तो इस प्रकार माया हमको बुलाती है, और माया दूसरे रूप में भी आती है, गर्लफ्रेंड के रूप में। मुझको छोड़ देते हो। माया हमको ऐसे बोलते, तो कृष्णा हमको बताते मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अगर हम माँ बाप की सेवा करेंगे उससे फल होगा कि हम अवसर मिलेंगे अगला जन्म में माँ बाप दूसरा माँ बाप की सेवा करना, और उसके बाद दूसरे माँ बाप, तीसरा, चौथा, ऐसे असंख्य माँ बाप की सेवा करना। और यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे तो हमारे वास्तव माता पिता, पिता हम अस्य जगत हो माता धाथ पिता महा, कृष्ण वास्तव माता पिता है, और उनकी सेवा करने से पुनर्जन्म नहीं होते। तो हम बहुत बार ये बात सुनते हैं, माता और पिता की सेवा करना यही परम धर्म है। तो हम सुनते हैं कि माता, क्योंकि माता और पिता हमको सुनाते, तो यह ठीक है, लेकिन ये आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये एक भौतिक कर्तव्य है। परंतु श्रेष्ठ सेवा है माता के लिए, पिता के लिए और सब प्राणियों के लिए, जीवन उत्सर्ग करना कृष्ण की सेवा में। क्योंकि यदि कृष्ण सेवा करना है सबका आध्यात्मिक कल्याण होता है। यदि हम पूरा जीवन उत्सर्ग करते हैं कृष्ण की सेवा में, तो माता पिता पितामह वो सब 14 पीढ़ी के संबंधी आत्मिया का उद्धार होते। हम माता पिता और पूरा वंश के आत्मियों की परम सेवा कर सकते हैं कृष्ण सेवा के द्वारा। तो इस प्रकार विश्वास होना चाहिए कि आपन के लिए और सबके लिए परम कल्याण निष्कर्ष होते हैं कृष्ण सेवा के द्वारा। यदि हम माता पिता की शारीरिक सेवा करेंगे। तो दो व्यक्ति की सेवा होते हैं और वो भी पूर्ण नहीं होते, क्योंकि माता पिता मार जाएंगे। लेकिन यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे तो पूरा जगत के निवासियों का कल्याण निष्कर्ष होता है। तो असंख्य जीवों की परम सेवा होती है इसके द्वारा। तो ये मेरा प्रस्ताव ही है। इसके बारे में कुछ प्रश्न है, आपत्ति है? कोई दूसरा माइक है? आपत्ति आएगी अभी। लोग कहते हैं, लोग ये बात सुन के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अलग अलग प्रकार से कहते हैं, यो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। पूरा जीवन उत्सर्ग मत करो कृष्ण सेवा में, अलग अलग प्रकार से कहते हैं। भागवत में नारद मुनि और दक्ष के पुत्रों के बारे में वर्णन है कि दक्ष प्रजापति के कितना 1000 ऐसे हर्यश्व पुत्रों, वो सब हर्यश्व बोलते थे। और दक्ष महाराज की पुत्रों एक पुण्य क्षेत्र को भेज दिए तपस्या करने के लिए, जिससे वे बल मिलेंगे, जिससे वे भी आदर्श गृहस्थ बन सकता था। तो नारद मुनि ये सब तपस्वी युवकों के पास जाकर सबको बताया, संसार में प्रवेश मत करो, यही तपस्या का फल भगवान कृष्ण को अर्पण करो और भगवान कृष्ण के पास जाओ। तो दक्ष के पुत्रों ऐसे किया और घर वापस नहीं गया। तो दक्ष महाराज नाराज था, तो कुछ नहीं बोल के और संतानों की उत्पत्ति की। इस बार अभी तो मुझे पूरे याद नहीं, 10,000 हर्यश्व शबलाश्व उनका नाम। और फिर नारद मुनि वो सब ब्रह्मचारी के पास जाकर एक ही प्रचार किए थे। तो ये तपस्या जो तुम लोग करते हो ये आदर्श है, लेकिन ये तपस्या केवल कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। और वे भी घर वापस नहीं गए, तो सीधे गोलोक धाम गए थे। तो इस बार दक्ष बहुत नाराज हो गया और नारद मुनि को श्राप किए थे, श्रप हिंदी में श्रप किए थे। तो तुम एक जगह में नहीं रह सकते हो 3 दिन के ज्यादा। तो गृहस्थों के लिए ये बड़ा दिक्कत है, लेकिन प्रचारक सन्यासियों के लिए वो बहुत अनुकूल है ने? तो जगह जगह में प्रचार करते हैं। और दक्ष नारद को बोला कि तुम साधु जैसे सजाते हो, लेकिन तुम धर्म का अर्थ नहीं समझते। मैं तुमसे बड़ा धार्मिक हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वैगबंद तुम जैसे नहीं हूं। तो ऐसे सांसारिक गृहव्रत धर्म में और कृष्ण व्रत धर्म, ये दो प्रकार के धार्मिक लोग में ये मत भेद है। इसके बारे में प्रहलाद महाराज ने कहा, नचियन कृष्णे परतस्वतो वाम मिथो विभद्ये च गृहव्रतानम् वदान्त गोभिः विशतां च मिश्रम् पुनः पुनश्चार्वित चार्वणानम्। जो गृह धर्मव्रती है कि हम गृहस्थ जीवन में रहेंगे और हमारी मति कृष्ण पर आकृष्ट नहीं होगी, हम धार्मिक या अधार्मिक गृहस्थ रहेंगे, तो ऐसे लोग का आकर्षण कृष्ण के लिए तो कभी भी स्फुर्त नहीं होगा। उनके अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा नरक में प्रवेश करते और इस प्रकार पुनः पुनश्चार्वित चार्वणानम्। चीज जो इस्तेमाल किया है वो बार बार प्रयास करते हैं उससे रस निकालना, जैसे वो गन्ना है नहीं, जिससे वो गन्ना जिससे रस निकाल गया है तो सूख जाता है, और उससे ही प्रयास करना और भी रस निकालना तो और नहीं है। तो ये सांसारिक जीवन है, उसमें रस नहीं है तो फिर भी हम प्रयास करते हैं उससे रस निकालना। और भगवान कृष्ण है अखिल रसामृत मूर्ति रसोबाय सहा, कृष्ण ही रसमय है, भक्ति रसमय। और सांसारिक जीवन में रस जो है कुछ रस, लेकिन मधुर रस नहीं है, वो कड़वा है। पहले से हम मधुर जैसे सोचते हैं, ओ शादी करना इतना अच्छा है, कितनी सुंदरी है मेरी पत्नी, लेकिन थोड़ा समय में वो रस जो हम पहले मधुर जैसे अनुभव किया था तो एकदम कड़वा जैसे हो जाते हैं। तो कितना परिश्रम करना है सुंदरी स्त्री को रखने के लिए, और इतना परिश्रम करके भी तो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। कितना काम, कितना मेहनत करना है, किस लिए? गोविंद दास क्या कहते हैं, शीत आतव बातव ऋषण ए दिन जामिनी जागीर विफले शैविनु कृपण दूर जन छप्पल शुकल अभागे। विफल से मैं इतनी सेवा करता हूं, इतना प्रयास करता हूं स्वजनों को संतुष्ट करने के लिए, तो फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते। विफले कृपण दूर जन, और किस लिए मैं इतना सब परिश्रम प्रयास करता हूं, छप्पल शुकल अभागे, वो सुख जो वास्तव सुख नहीं है उसलिए। लेकिन यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे तो कृष्ण भगवान कृष्ण का एक मुख्य गुण है कि वे कृतज्ञ है। यदि हम थोड़ी सी सेवा करेंगे भगवान कृष्ण के लिए तो वे बहुत कृतज्ञ होते हैं। हाँ, आपका प्रश्न क्या था? आवाज नहीं आता।
जैसे बीच में देख सकते कह रहे थे कि आप बहुत भाग्यशाली हो, तो कल मैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ बात कर रहा था, तो मैं कह रहा था कि बहुत भाग्यशाली है, आते हैं इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में, तो वो कह रहे थे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाता हूँ सब ऐसे ही कहते हैं। तो
क्या बोला,
जिस भी संस्था में जाते हैं इस तरह का आर्ट ऑफ लिविंग हो गया किसी,
अच्छा बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। कौन राष्ट्र सही है? आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब तो पहले आपसे कितना आजकल 3,000 रुपया लेते हैं, हाँ कितना 5,000 पहले, तो कौन भाग्यशाली है, रवि शंकर या तुम? और कुछ बकवास बोलते, भगवद गीता क्या है? उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन अर्जुन कैसे उसको ग्रहण किए थे और कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रदान किए थे, तो केवल यही सही है, इसको पालन करो, मैं भगवान हूं ग्रहण करो, ऐसे नहीं बोले भगवान। बुद्धि से विचार करके ग्रहण करो, इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दिए थे। सही है कि नहीं? कौन भगवत गीता पढ़ ले? तो भगवान कृष्ण कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं तुम ग्रहण करो या नरक जाओ, ऐसे नहीं बोलो। बुद्धि लगाओ, समझ लो मैं क्या बोलता हूं, तो समझ लो जीवन का क्या उद्देश्य है, परम सत्य क्या है, कौन है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देव मजं विभु। भगवद गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण के बारे में कहते कि आप परम सत्य है, परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत आदि परम पुरुष है, सभी देवताओं के स्रोत है, और केवल मैं ऐसा नहीं बोलता, तो सब महान महान ऋषि देवा मुनिगण ऐसे कहते हैं कि कृष्ण परम सत्य, वही भगवान है। और आर्ट ऑफ लिविंग क्या, उसका क्या सिद्धांत है, हमको 5,000 रुपया दे दो, वो पहले सिद्धांत है। हम ऐसा नहीं बोल, हम बोलते यहां आओ सुनो और प्रसाद ले लो, अगर कुछ पैसे देगा हम भगवद गीता आपको दूंगा, तो ये कोई चीटिंग संस नहीं है। उसका क्या सिद्धांत, आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, इस संसार में रहो सुख सुखी से, लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि इस भौतिक संसार दुखालय में शाश्वतम है, तो जो बोलते हैं कि सुखी रहो इस संसार में, वे पूरे शास्त्र सिद्धांत के विपरीत है, तो कितने बड़े ढोंगी है। तो सब ऐसे कहते हैं कि तुम भाग्यवान हो यहां आना, तो बुद्धि लगा के विचार करो कौन राष्ट्र सही है। मेरा एक ही प्रश्न था कितने साल के पहले, 34 साल के पहले, कि सब लोग कहते हैं ये मार्ग सही है, इसलिए मेरा विश्वास नहीं था किसी रास्ते में, ये सब बोलते ये मार्ग आओ ये मार्ग आओ, लेकिन श्रील प्रभुपाद का उपदेश सुनने से मैं संतुष्ट था कि यही सही मार्ग है, क्योंकि प्रभुपाद तो पहली बात है कि प्रभुपाद आपन को प्रचार नहीं किया था कि मैं बड़ा हूं, मैं गुरु हूं, मैं सब कुछ ही हूं, नहीं, प्रभुपाद तो कृष्ण को प्रमोट किया था, प्रभुपाद तो खुद के बारे में कुछ एडवर्टाइज नहीं किए थे, कृष्ण वही भगवान है। और प्रभुपाद कभी नहीं बोले कि ये मेरी धारणा है, नहीं, ये प्राचीन अनादि शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के अनुसार प्रचार किए थे। और श्रील प्रभुपाद का चरित्र पवित्र, ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद बड़ी बड़ी बात बोले लेकिन नीच काज किए, ऐसे नहीं। और मैं देखा था कि श्रील प्रभुपाद के शिष्यों तो भक्ति में ज्यादा दिन नहीं थे तो फिर भी तो कितने प्रगति की आध्यात्मिक जीवन में। तो मांस मछली अंडा प्याज रसून शराब टी कॉफी और सब कुछ छोड़ दे, और यौन जीवन से आसक्त नहीं थे, और सुबह शीतकाल में भी उठते थे भगवान की प्रशंसा करने के लिए। और कितना एक्चुअली क्या हुआ, पहले दिन वो मंदिर गया था, ये इंग्लैंड में था, और ये शीतकाल था, और देखा तो 4 बजे में उठे हैं और बहुत ठंडा था, तो कैसे ये सब लोग हर रोज ऐसे करते, और 4:30 बजे स्नान करने के बाद तो भगवान का कीर्तन करते हैं और नाचते हैं। तो उससे मैं समझ गया कि इसमें वास्तवता है। डेडिकेशन है ये, ऐसा करते क्यों? क्योंकि वास्तव आध्यात्मिक अनुभूति मिलते, नहीं तो संभव नहीं था। क्यों लोग इंग्लैंड का शीतकाल में 4 बजे में उठेंगे भगवान का कीर्तन और आरती करने के लिए? अगर कुछ नहीं है उसमें तो क्यों करेंगे? और तो प्रभुपाद तो उनके शिष्यों को कुछ इंद्रिय सुख नहीं दिए, तपस्या किए थे तो क्यों? लेकिन बहुत उनकी सभी मुख बहुत उज्ज्वल था, क्योंकि आध्यात्मिक साक्षात्कार था, वो प्रकट था सबके चेहरे में। वो सब दूसरे लोग जो बोलते है वो खाली बोल था, कुछ व्यवहारिक नहीं था। अलग अलग प्रकार से संसारिक जीवन के साथ एडजस्ट करना। माइक से कहो, माइक से कहो, प्रेम से कहो। What is the definition of a brahmachari? ब्रह्मचारी का मतलब जो ब्रह्मचर्य इति ब्रह्मचर्य, जो आध्यात्मिक जीवन में लिप्त है वे ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचार्य, चार्य का मतलब जाना, तो जो सदैव ब्रह्म अर्थात अध्यात्म में नियुक्त है वे ब्रह्मचारी है। What kind of and to what extent is service to parents acceptable? पेरेंट्स के लिए पूरी सेवा करनी चाहिए, केवल पेरेंट्स नहीं तो सब जगन निवासियों को वो संभव है कृष्ण भक्ति के द्वारा। केवल शारीरिक सेवा वो पूरी सेवा नहीं है, आध्यात्मिक सेवा ही सेवा है। ब्रह्मचारी होने से आप पेरेंट्स की परम सेवा कर सकते, घर रहने से आप केवल शारीरिक सेवा कर सकते हो। आप वास्तव सेवा नहीं कर सकते। Yeah, ashram doesn't matter, consciousness does matter, but that's true. But generally, those who are in grihastha life, they're forced that their consciousness must be on whatever, you know, on a computer or engineering project or whatever. So consciousness is the main thing, but if you're in brahmachari life, you have the opportunity to focus your consciousness fully on Krishna. So ultimately, consciousness is what matters. But in brahmachari life, the opportunity to put your consciousness fully into Krishna is there, whereas in grihastha life, to a large extent, is not. So you can be a very serious and dedicated devotee in grihastha life. That's true. But if you're actually serious and dedicated and you're not already stuck in grihastha life, then why enter it? That's my point. If your aim is Krishna, then why go into something which is going to distract you? Why not go fully for Krishna? If you're already in grihastha life, we don't discourage grihasthas. We say, alright, be a grihastha. Or if someone wants to get married, we say, alright, be a grihastha, be a good grihastha. But I'm saying, why just go blindly that way? Why, if you can be a brahmachari, it is a possibility. You don't have to go that way. If you go that way, you'll have lots of problems. Who's married here? So, it's a cakewalk, it's very easy. No, you have to work damn hard, isn't it? To maintain everything. I know many people discourage you, and it's a bunch of nonsense that in modern ISKCON they discourage people from being brahmacharis. It's nonsense. It's rascaldom. They should encourage people. You come and you be a brahmachari. If you can't, alright, you be a grihastha. But from the very beginning to discourage people from being brahmacharis, it's rascaldom. Why should they do that? Why not? Why not? If you can come and give your life to Krishna, then why should you give your life to Nokia company or Hewlett Packard company? Why? It's just, as far as I can see, it's just enviousness that they don't want to bother training people up, and they don't want to bother dealing with their angry parents. And then you come and then you give us, you know, money and we'll be happy. But what about Chaitanya Mahaprabhu's movement and preaching Krishna consciousness all over the world? Why are they encouraging people? Why are they discouraging people from being brahmacharis? If they can be, let them be. If they can't, all right, you can be a grihastha. We don't say it's a sin or anything like that. We don't say it's bad. There are so many good Grihastha devotees. But why discourage people? Why not encourage people to go to the best thing? If you can't do that, okay, do something else.
So in the end, they say be safe.
All right, let them say whatever they like. I'm saying what I like. You go whichever way you like. You choose. Be safe. It's not very safe. All the time thinking about Nokia company. Safety is to think of Krishna. Yeah. कौन बोला ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या
कई डिस्कशन में चल रहा था वो
कौन 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 ये कौन से शास्त्र में है
की बात मैंने कल सुना था
शंकराचार्य की बात है ये शास्त्रीय बात नहीं है
और दूसरे तरफ
ब्रह्म सत्य और जगत ब्रह्म से आते हैं तो इस प्रकार जगत मिथ्या है कि वो धारणा है कि जगत हमारा सुख के लिए वो मिथ्या है लेकिन जगत ही है सब कुछ ही है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए तो पूरा मिथ्या नहीं है ये मायावाद का विचार है तो जगत मिथ्या हो तो यदि मैं मिथ्या गृहस्थ हूं या मिथ्या ब्रह्मचारी हूं तो उसमें क्या फर्क है आपका यही प्रस्ताव है क्या तो कोई फर्क नहीं है अगर हम मिथ्या इंद्रिय सुख करेंगे या मिथ्या आध्यात्मिक जीवन करेंगे में कोई फर्क नहीं यही सब मायावाद का विचार है जागृत ही है और जागृत जगन्नाथ की सेवा में लगाना चाहिए यही सिद्धांत है
रिलीजन धर्म जो हम लोग बोलते हैं पढ़ते हैं और जो बताया जाता है उसमें शुरू से अगर हम देखें इतिहास के तरफ जाएं तो रिलीजन को एक
रिलीजन ये एक्चुअली ये रिलीजन का विचार ये पश्चिमी विचार है पाश्चात्य विचार तो वैदिक जीवन में कि रिलीजन जीवन का एक भाग है वो विचार नहीं है धर्म ही जीवन है और जीवन धर्म के लिए दोनों अभिन्न है और पाश्चात्य विचार है कि रिलीजन है जीवन का एक अंश है लेकिन वास्तव मानव जीवन में धर्म ही जीवन है धर्म पालन करना so-called religion वो ही religion जो religion का नाम है चलते वो ही so-called religion है और इसलिए हम भगवद गीता यथारूप का प्रचार करते वास्तव धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म के बारे में कितना गलत फहमी है जगत में पृथ्वीते जतो कथा धर्म नाम चले भगवत कहे तहा परिपूर्ण छले अर्थात वो सब कुछ जो पृथ्वी में धर्म का नाम में चलते है तो लगभग सभी छल है लोगों को धोखा देने के लिए और वास्तव धर्म से अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वास्तव सत्य प्रकाश देखना है वास्तव धर्म के द्वारा तो हम अज्ञान का अंधकार में है और ये सब ढोंगी लोग जो साधु गुरु इत्यादि का नाम में चलते हैं हमको और गहरे अंधकार में ले जाते हैं। और क्या?
हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक सवाल है कि अभी मैं यहाँ पे जो एक कटिंग के शो होता है वो मैंने देखा, तीन बार देखा। उसकी शुरुआत में ये कहा जाता है कि ये जो हमें जो भौतिक शरीर मिला है चार चक्रों में जो फंसा हुआ है, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, ये जो हम भौतिक शरीर मिला है ये
वेलकम मटेरियल वर्ल्ड से वेलकम फ्री गिफ्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
तो ये जो भौतिक शरीर हमें मिला है ये उस केस में मिला है जब दरअसल ईश्वर के पास कृष्ण भगवान सारी आत्माएं, हम सब लोग आत्माएं हैं और हम सब ईश्वर के पास थे, पर कुछ आत्माओं ने ये द्रोह किया।
द्रोह किया
ये बिल्कुल ये शब्द इस्तेमाल किया गया, ये मल्टीमीडिया शो जो नीचे चलता है अगर आपने देखा हो।
क्या किया?
विथड्रॉ
किया,
रिवोल्यूशन। तो कुछ आत्माओं ने ये द्रोह किया जिन्होंने इच्छा प्रकट की ईश्वर से अलग होने की, उस केस में
यही माया है। वास्तव में हम ईश्वर से अलग नहीं हो सकते, लेकिन ये अभिमान है कि मैं ईश्वर से अलग हूं वो ही माया है। कृष्ण को भूल करना यही माया है और उसका फल है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख।
तो मेरा सवाल ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग जो अभी हमारा जो मोटिव है, सेटिंग अभी करता हूँ हर रोज पांच राउंड, अब चार राउंड से शुरुआत की थी मैं हर रोज करता हूँ, हमारा जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि हम अध्यात्म करें, मृत्यु के समय हम कृष्ण भगवान को याद करें ताकि हमें अध्यात्म जीवन, अगले जीवन, पूर्ण जन्म का
अगले जीवन नहीं हो, यही हमारा लक्ष्य है।
जो हमारा अल्टीमेट एम है वहाँ पे ईश्वर के पास पहुँचना है। पर
ईश्वर मतलब कृष्ण, कृष्ण
कृष्ण भगवान के पास पहुँचना है। तो मेरा जो सवाल ये है कि जो इस शो में बताया गया है कि आत्माओं को जो ये द्रोह किया, मतलब पहले से ही ईश्वर के पास थे और जब हमने द्रोह किया कि हम ईश्वर से अलग होना चाहते हैं और तब हमें ये भौतिक शरीर मिला, तो सवाल मेरा ये है कि ईश्वर के पास ऐसा हम मतलब ऐसा ही कहते हैं, मैं भी भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं भी ये मानता हूँ कि ईश्वर के पास पहुंचने के बाद हम सारे सारे दुख दर्द ये जितने भी टेंशन हैं, नौकरी चाकरी बीवी बच्चे कंप्यूटर क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह, इन सारे टेंशन से हम मुक्ति पा जाए और भगवान के पास हो जाए। तो ये सवाल मेरा ये है कि ईश्वर के पास पहुंचने के बाद भी उन आत्माओं को इस तरह का दूर करने की नौबत क्यों आई और वो अलग होने की इच्छा प्रकट होने क्यों की, क्योंकि वहां पर जाकर हमें अल्टीमेट ब्लेस जो है जो वो हमें मिल चुका होना चाहिए,
हमें भी जाना चाहिए ना? जीव की थोड़ी सी स्वतंत्रता है, जीव एक मशीन नहीं है। प्रेम का मतलब हम अपनी इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं, तो इसके साथ ये स्वतंत्रता के साथ संभावना है कि हम वो सा स्वतंत्रता अच्छी तरह प्रयोग नहीं करेंगे। जीव तटस्थ शक्ति है, इसका मतलब है कि हम भगवान की सेवा में रह सकते हैं या भगवान की सेवा से अलग रह सकते हैं, तो वो संभावना है, हमेशा हमारा चॉइस है भगवान की सेवा करना अथवा नहीं करना। और यदि हम निर्णय करते हैं भगवान की सेवा नहीं करना तो हम भौतिक जगत में आते हैं। तो हम क्यों ऐसे करेंगे तो उसको समझना कठिन है, लेकिन कि वो चॉइस है उसको समझना चाहिए, नहीं तो हम आरती करेंगे मशीन जैसे, उसमें प्रेम नहीं होगा। अगर चॉइस नहीं है भगवान की सेवा करना अथवा नहीं करना, तो अपनी इच्छा से कृष्ण सेवा करना वो ही प्रेम है, जबरदस्त से नहीं होता। So we have the choice to serve Krishna or not.
क्या
बोलते हैं? I don't understand. What's he saying?
Sir, I just try to translate it into English. My query is like, you know, after chanting, after.
Can you make it like brief and to the point? Well, that's what I already answered. So what's the question now?
So he's asking that what is actually that point of motivation that makes the jiva become rebellious in the kingdom of God?
It's called foolishness. Sambhavana hai.
He was asking something else. What he was asking, he saw something below. He asked that some souls they want to they said that they are not going to work.
Well, that's what I said. It's difficult to understand why we should choose. But that the possibility is there to choose differently, that must be there, otherwise we would be machines.
Actually, when those souls are there, there is no choice. They are only devoted to Krishna.
Now that's what I'm saying, there must be choice. If there's no choice, then we are just like machines. There must be the choice to serve Krishna or not serve Krishna. Without choice, there's no love. Just like if I bring a gun and tell you, serve me, you'll serve me out of fear. But that's not love. So Krishna can force us, you serve me, but that's not love. So love means you have the choice to serve or not to serve. And if the choice is there, that means there's the possibility of misuse of it also. Because we're very tiny. We are very tiny living beings. So we have the possibility with very tiny intelligence. So we can misuse that. The possibility is there. It's difficult to understand why we should do so, but that the possibility is there should be understood. Just like we see, someone is chanting Hare Krishna, they're following everything, and then they change. Why? Why should they do? They're experiencing happiness in Krishna consciousness. Then suddenly, we see in this world also. Why should they do that? It's called misuse of independence. It's a commonly asked question.
One more question I have. That, often our parents also say this, that what you guys have to do is do this and do that. What we learned earlier? But after coming to ISKCON and listening to your, we concluded that this is the thing. So how can we distinguish, like somebody feels that he is misguided. So if it is, he is misguided by his parents or
parents.
So how to...
No, everyone's misguided by their parents, pretty much.
That's what I'm asking. So how
because they themselves, they never got proper guidance. Well, it has to be handled carefully. Because after all, the parents, they think that they are doing the best for us. But they don't know, because they don't have spiritual knowledge. So it has to be handled carefully. I'm not saying that you go and slap your parents in the face or anything like that. Although, people do that nowadays, but You should also see that they are part and parcel of Krishna. You don't have to mistreat them. But you should understand that the ultimate aim of life is to attain our spiritual position in Krishna's service. And what we've been taught is simply to become a rat in the rat race. And in the society of rats, they think to be a rat is the best thing. So people think to earn money and have an apartment and work hard like an ass, that's the goal of life. And if you don't do that, there's something wrong with you, isn't it? But even materially, it doesn't make any sense. What to speak of spiritually? So, mostly people don't understand this. Because from the beginning of life, we're brainwashed by our parents, by the educational system, by the TV, work hard, earn money. That's all there is to life. It's cheating. The whole society is cheating us. What I mean to say, I said. It was very clear. I didn't mean to say anything else. It was absolutely clear. The whole society is cheating us, that's all. You get clear spiritual knowledge from Srila Prabhupada's books.
Told to follow the four principles regulated principles, and he gives up that so-called material pleasures. But when he comes over there, he registers no taste immediately.
There's no taste from the beginning. There's taste. Otherwise, why should people come? You don't find any taste in Krishna consciousness.
Sometimes there is spiritual dryness.
Why? Definitely, there's taste. Otherwise, why should we do anything? Just like people ask me, how many years have you been in this movement? And I tell them that now it's, 34 years. And then they say, well, are you happy? And I say, well, if I'm not happy, then why should I have stayed 34 years? No one's forcing me. Even today, I could grow my hair out and have a punk rock hairstyle and, you know, I could do anything, I guess. I guess I'm a bit old to be a rock star. Well, no, they have 60-year-old rock stars too, right? And I have to learn how to play the guitar. I never learn. Anyway, what I'm saying is no one's forcing me to do this. No one forces me to get up early in the morning, but I like to do it because there's spiritual pleasure. If we didn't like to do it, then why should we do it? That in itself is a test, isn't it? There must be something there. Why should we do it? There must be some taste there. Otherwise, how could you stop all these sinful activities? Must be some taste there. Maybe it's not as much as you want, but then you have to keep on striving. Actually, our aim is to serve Krishna. If we think how to serve Krishna, then there may be ups and downs, but we'll always remain steady. And Krishna will bless us with happiness. But if we think how I can be happy, then we'll never be happy. That's the secret of bhakti. If we do it for our own pleasure, we'll never be happy. If we do it for Krishna's pleasure, we'll always be happy. That is bhakti. Ah, that's what I'm saying. Stay in the association. Don't go away. That's what I'm saying. Why remain in that? Exactly, you have pinpointed the problem. If you remain among materialistic people, it's very difficult to remember Krishna. If you remain among devotees, it's very easy to remember Krishna. That's it. Thank you. You got the essence of the lecture for me. It's I was making a proposal. I know you're all not going to leave your college, and I maybe not even recommend to do that immediately. I'm not saying you all immediately leave your college, and you should enter carefully. I'm not saying that immediately you all just leave everything and come to Brahmacharya life. You should do that in an intelligent way also. But I'm just saying the possibility is there. Because you want to be Krishna conscious, but in your college life it's difficult. There's the proof of what I'm saying. So why go on your whole life like that? Well, there's three categories there already.
So my question is there by any chance a third category exists?
Well, you said it yourself just now. Practically the whole of modern society, well, actually not just modern society, but without Krishna consciousness, what is there? Ahara, and it's not me saying animal life. Ahara nidra bhaya maitunam cha samanya metat pashubhya naranam. Humans and animals both eat, sleep, mate, and defend. Dharmo hitesham adhiko visheisham dharmena hina pashubhya naranam. So dharma is the special prerogative of human life, without which humans are animals. So yes, especially in the modern age, people, their whole life is dedicated to materialistic pursuits, which means they're like animals, sophisticated animals. So those who take to Krishna consciousness, they come to spiritual life, they transcend the animal life. Yeah, so? What are you suggesting, for instance?
I have an example, like there are people who would not care for worldly things. Say for example a scientist like Newton or Einstein, they did not care for
worldly things. They were only dedicated to the world, they were studying the world.
But
isn't it?
For their own benefit. There are people as of now.
But it's all for worldly benefit. It was not for Krishna, it's not for understanding the soul. They may have a sense of selflessness, but because they have no understanding of this, of actual spiritual life, it all comes back to the same thing. How to benefit human society, but if human society has no knowledge of that beyond eating, sleeping and mating and defending, it means how to make people into more comfortable animals, that's all. They cannot, without knowledge of the soul, then whatever benefit we do for others is only to make them more comfortable animals. That's all. And whether or not scientific progress has made us more comfortable, that's another question. Because, well, for instance, it was what I'm told, I'm not a scientist, that Einstein's speculations, they opened up the path to atomic weapons, for instance. So what is the benefit? This is all the propaganda that science is benefiting society. How is it benefiting? You have to work. Nowadays people work so hard, they have so many anxieties, they're physically less healthy than previously, they're mentally more disturbed, you can't trust anyone. So what's the benefit actually? It's all just propaganda. People have benefited. We're all brainwashed by this propaganda. You may have an idea to help others, but if you don't know how to help them, you may do more harm. Just like Mother Teresa, she's supposed to be the great saint. But then, you know, she was a meat eater and she fed people meat, and by her helping, by feeding them, she gave them more sinful karma. So in the long run, she didn't help them at all. She helped them to go to hell more. If you don't know the laws of nature and you try to help people, in, then you'll just do the wrong thing. You'll end up making more of a mess. Just like someone may have a heart attack and someone says, okay, I'll do an operation for you. But if he doesn't know how to do it, just like if you had a heart attack and I said to you, I'll do a heart operation for you. You say, okay, well, what's your qualification? I don't know, but I want to help you. It's better you don't have any operation than an operation from someone who doesn't know what they're doing. So people don't know the laws of nature. They don't know the goal of life. And they have an idea they want to help others, but because they don't know how, they end up making more of a mess.
What if I know how to? If I have an expertise, how to?
Yeah, well, that expertise means to know who we actually are. We are spiritual beings, and no amount of material adjustment can help us at all. Because we're stuck in the world of birth and death. So it's, you know, if you make a air-conditioned passage to hell, is that helping people ultimately? Rather, it may encourage people. Oh, actually, the road to hell is very nice. It's air-conditioned. So you may actually be doing people a disservice, and people think it's a service because they don't know. They don't have spiritual vision. What's that?
Could you repeat the last point that you just explained? I was a little distracted. Sorry about that.
Well, I'm saying if you don't know, you may want to help others, but if you don't know how to, you may actually make the situation worse. Just like if you make an air-conditioned road to hell, people may think, oh, this is a very nice road. It's very nice to go, but they end up in hell. So by purporting to make the material world a better place, we're actually doing people a disservice. Because the material world by nature is miserable, and we should use the human life to get out of this material world and go to the spiritual world. But if we say, no, no, we're making it nicer, we're making it better, I've dedicated my life to making the material world better. But that's misleading. Just like if someone in the prison, every day you're getting beaten in the prison, every day, 10 strokes of the whip, and someone says, hey, you know what? Now I'm doing a great service for you. I'm making a gold-handled whip. So you'll have a high-class whip, not for everyone, only for you. I'm helping you. See, you're going to be beaten with the golden whip. You say, oh, that's very good, you see. I'm a more prestigious prisoner. I get beaten with the golden whip. And everyone else gets beaten with the iron handle whip. You see, very good. Now my position has improved. That's what material help is like. Foolish people think it's helpful. In doing so, they simply demonstrate their foolishness. Vaikunth ke baare mein?
Janna chahunga.
Theek hai, jaye, jaye.
Jo ki manav jeevan ka apna lakshya hai, hum sabhi ka.
Hare Krishna kaho aur Bhagwan ke dhaam jaye. Very good. Go.
Prabhuji, सबसे पहले जानना चाहूंगा मैं जैसे जब हम वैकुंठ प्राप्त कर लेते हैं तो वह धाम पहुंचाते हैं वहां भगवान ओमनी प्रेजेंट रूप में है लॉर्ड कृष्णा या फिर एक विक्रय के रूप में है जहां हमें सेवा करनी पड़ती है किस रूप में है वो
भगवान भगवान अनेक रूप में है भगवान का स्वयं रूप है कृष्ण। भगवान एक है फिर भी उनके अनेक रूप है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो अगर आपकी रुचि है राम भगवान की सेवा में, आप राम भगवान के पास जाकर राम भगवान की सेवा करेंगे। आपकी रुचि अगर चतुर्भुज नारायण की सेवा करने के लिए, आप नारायण के पास जाएंगे। और स्वयं रूप या आदि रूप है द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर कृष्ण।
Maharaj, when I think about the Brahmacharya life, I read your books how to.
At least you can think about it. ये मेरा प्रस्ताव है, तो कम से कम इसके बारे में सोचे।
And when I meet also the strong bitter mind Brahmacharya also, mind always in that time you get lot of inspiration of bitter mind. But when I
So don't choose your association. Association is very important. ऐसे संग करना चाहिए जिससे हमारा उपकार होगा, जिनकी पूरी निष्ठा है भक्ति में, ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए। और ऐसे लोग जो बोलते हैं तो इतने सी भक्ति मत करो, इतने से आत्मसमर्पण मत करो, तो ऐसे भक्तों से हम कैसे प्रेरणा मिलेंगे। ज्यादा भक्ति मत करो, थोड़ी भक्ति करो, ज्यादा नहीं, तो कैसे हम प्रेरणा मिलेंगे शुद्ध भक्ति के लिए। गृहस्थ भक्तों भी तो उनके लिए भी ऐसा प्रचार करना चाहिए कि तीव्र रूप से भक्ति करना चाहिए जितने भी संभव हो गृहस्थ जीवन में भी। गृहस्थ जीवन का मतलब नहीं है कि हम कभी कभी हरे कृष्ण कहेंगे और कभी कभी आइसक्रीम पार्लर जाके आइसक्रीम खाएंगे, नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी तो मजबूत होना चाहिए भक्ति में। It may happen. Grihastha jivan may be fall down hote. Actually, fall down ka sawal nahi hai, or it's already a fallen situation. Actually, no, actually it is, because all the time you have to serve. Bifale sevinu kripana durajan. Agar hamesha wo Nokia wala ya Hulet Paka wala ki seva hote, ye fallen condition hai. Ye Vaikunt ka position nahi hai. So, yadi hum hamesha fallen, fall down kehte hai, to bari sambhavana hai fall down hoga. यदि हम ब्रह्मचारी जीवन में हमेशा कैसे हम प्रचार करेंगे, कैसे हम भक्ति का विस्तार करेंगे, कैसे हम और तीव्र रूप से गुरु और कृष्ण की सेवा करेंगे, तो कैसे फॉल डाउन होगा। यदि हम हमेशा फॉल डाउन का स्मरण करेंगे तो फॉल डाउन होने का बड़ी संभावना है। और यदि हम हमेशा कैसे हम और भी भक्ति करेंगे, कैसे हम और भी प्रचार करेंगे, तो ये बात कहेंगे तो फॉल डाउन का सवाल कैसे होगा। यू हैव ऑल दीज बुक्स पॉजिटिव थिंकिंग, तो कृष्ण भक्ति में भी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। क्यों फॉल डाउन। If you're that much worried about fall down, then all right, you'll be a grihastha. It's all right. We're not saying you have to be a brahmachari. Lekin sambhavana, dekho, kitne sari brahmachari hai, jo prasann hai brahmachari jivan mein. क्यों ऐसे प्रचार होते थे ब्रह्मचारी होना संभव नहीं, तो कितने सारे हैं, कैसे संभव नहीं हो, क्यों ऐसे प्रचार करते? It's just enviousness from what I can see. They just want to prevent people from attaining the highest goal of life. Why should they preach like that? Don't be a brahmachari. If someone's completely unfit, all right. For some people I tell them, they say, I want to be a brahmachari. I say, for you, you better don't be a brahmachari. Some people I tell them, they're not fit for that life. It's not that I'm telling everyone you'll be a brahmachari. Some I tell them, you better get married. Don't mess around anymore. But if you're fit, then why not go for that? Risk? All right, it's a risk, but nothing ventured, nothing gained. In everything there's a risk. In Grihastha Jivan may be risk hote. I say, koi millionaire nahi hai duniya mein, jo koi risk kabhi bhi nahi liya. In business there's always risk, isn't there? You have to take a risk. So risk ka matlab to satyanash bhi ho sakte. But it's a calculated risk, and if they have good luck, they succeed. So it's a calculated risk, or yadi hum guru or Krishna ki charan mein ashray lete hai, to kyon guru or Krishna humko sahayata nahi karenge? Itne si baat, fall down, fall down, fall down. Iska matlab bhagwan or guru mein vishwas nahi hai. Bhagwan or guru humko raksha nahi karenge kyon? Yadi hum sincerely atma samapan karenge, to guru or Krishna humko raksha karenge. Aur beech mein agar kuch chuti ho, to phir bhi guru or Krishna humko sahayata karenge. Aise nahi hai, lagte aise nahi hai, koi brahmachari ya sanyasi jo jyada din iskon mein hai, ya koi dusra sangs mein hai, jinka brahmacharya ya sanyasi jiva mein kuch bhi vigna ya dhikat ya kuch upadrav nahi tha. Hote hain. Hum nahi bolte hai ki kuch vigna nahi hoga aur kuch na kuch hoga. Lekin ye sab pariksha hi hai. Brahmacharya jivan mein bhi maya humko bulate hai. To hame kya karna hai, to aur दृढ़ता से गुरु और कृष्ण के चरण में आश्रय लेना है. क्या श्लोक है देखाओ भगवद गीता में. हाँ, गेट आउट द भगवद गीता, फाइंड द भगवद गीता, गेट द श्लोक. नित्याचार से उच्यते, वही श्लोक है. नहीं देखाओ, read it. Read it.
Karne kriyani samyamya asko manasa smanam vikriyalta vimuratma mithya chara sauchya.
Aur anuvad,
jo karmendriyo ko vash mein to karta hai kintu jiska man indriya vishayon ka chintan karta rehta hai vah nishchit roop se swayam ko dhoka deta hai aur mithya chari banata hai.
Next verse.
उसके बाद दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा यस्मिन्द्रियाणि मनसः नियम भार भते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते. दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेन्द्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है।
हाँ, और आपका प्रश्न क्या है?
जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार से अपने मन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए जिससे।
तो मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार मन के द्वारा इंद्रियों को संयम करना चाहिए कृष्ण भक्ति में।
हम किस प्रकार से अपने इंद्रियों को,
ये ब्रह्मचार्य पुस्तक पढ़ो, उसमें पूरा वर्णन है। ये श्लोक मिथ्याचार से उचित है। ये श्लोक बोलते लोग जो कि और देखो सब ब्रह्मचारी ऐसे है, तो सब ऐसे नहीं है। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो एक प्रकार के लोग है जो मिथ्याचार है, और दूसरे है जो मन को संयम करते हैं। तो क्यों केवल मिथ्याचार श्लोक कहते हैं? कोई सब ब्रह्मचारी डोंगी है क्या? नहीं। ओके, लेट्स फिनिश नाउ। हरे कृष्ण। इनफ फॉर नाउ। जनरल आइडिया इज देयर।
फाइनल
बुक्स? यू कैन से इफ यू लाइक।
सो वी हैव अ स्टॉक फ्यू बुक्स एट द बैक रिटन बाय हिज ऑनर्स एंड सो वास अवेयरनेस गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, ब्रह्मचारी कृष्ण कॉन्शियसनेस,
that's a book everyone can appreciate. Maybe everyone won't appreciate the Brahmachari book, but everyone can appreciate Srila Prabhupada. It's a very nice book glorifying Srila Prabhupada.
And the last one, on pilgrimage in Holy India.
Ramayana today is Sita Devi's appearance day. It's a good day to take Ramayana.
And there are some series also in Hindi and English, and the language.
CDs of lectures. If you want to hear more, there's hundreds of hours of lectures.
Said the back of stall is there, they can take. And few important announcements.
If anyone wants, I can sign any book they take also.
Yeah. So they can take the books and Maharaj will sign on the books.
Like glimpses of traditional Indian life, that's there also. Other books are there also. Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada told me to write books, so I'm writing books. So if you like, you can take them.
So we'd like to thank Ajahn Bhakti Swami Maharaj, Bhakti Swami Maharaj.